आज के पाठ में प्रामाण्यवाद का जो प्रकरण है ये समाप्त होने वाला है, लास्ट प्रामाण्यवाद वाला पाठ है। तो अपनी चर्चा चल रही थी कि विवादास्पदम विवादाध्यासितम जलज्ञानम प्रमाणम समर्थ प्रवृत्ति जनकत्वात्, इस अनुमान वाक्य से जो प्रामाण्य गृहित होता है, इसमें इस वाक्य में जो साध्य है वह क्या है। तो हमने बताया था कि जलज्ञानम विवादाध्यासितम जलज्ञानम प्रमाणम में जो प्रमाणम पद है इसका अर्थ है प्रमात्मकम ज्ञानम, न कि प्रमाकरणम। इसी बात को आपके ग्रंथ में बताया जा रहा है कि यहाँ पर यथार्थ रूप जो प्रामाण्य है वही यहाँ साध्य है, प्रमाकरणत्व रूप प्रामाण्य साध्य नहीं है। ये आप जान लीजिए, आप बल्कि जानते भी हैं कि ज्ञान को भी प्रमाण शब्द से कहा जाता है और ज्ञान के करण को भी प्रमाण शब्द से कहा जाता है। तो इस तरह से प्रामाण्य दो प्रकार का हो गया, एक यथार्थ रूप प्रामाण्य और एक प्रमाकरणत्व रूप प्रामाण्य। तो यहाँ जो जलज्ञानम प्रमाणम यह जो वाक्य है इसमें प्रमाणम का अर्थ क्या करना है, यथार्थ रूप प्रामाण्यम करना है या प्रमाकरणत्व रूप प्रामाण्यम करना है। तो उसमें ग्रंथकार कहते हैं कि प्रामाण्यम साध्यम यथार्थत्व इत्यर्थ, यानी यहाँ पर यथार्थ रूप प्रामाण्य ही साध्य है, न तो प्रमाकरणत्व। प्रमाकरणत्व रूप जो प्रामाण्य है वह साध्य नहीं है। कहा कि क्यों नहीं है, प्रमाकरणत्व को साध्य मानने में क्या आपत्ति है। कहा कि स्मृत्या व्यभिचारापत्ति है, यदि प्रमाकरणत्व को साध्य मानेंगे तो स्मृति से जो है व्यभिचार की आपत्ति होगी। ये स्मृति में व्यभिचार की आपत्ति होगी इसका तात्पर्य क्या है, तो इसको समझिए कि हेतु अगर साध्य में ही रहे, साध्य से इतर में, साध्य से भिन्न में अगर हेतु न रहे तो वहाँ पर हेतु को सही माना जाता है। यदि साध्य से पृथक में भी, साध्य से भिन्न में भी हेतु अगर चला जाए तो उस हेतु को व्यभिचारी हेतु कहते हैं, और जहाँ व्यभिचारी हेतु होता है वहाँ पर अनुमान का उदय नहीं होता है, वहाँ अनुमान नहीं हो पाता। फिर से सुन लीजिए, हेतु केवल साध्य में ही रहे, साध्य से भिन्न में न रहे तो वह हेतु सही है और वहीं पर अनुमान का उदय होता है। जहाँ पर हेतु साध्य से भिन्न में भी चला जावे वहाँ पर वह हेतु व्यभिचारी हेतु कहलाता है और वैसे स्थल में अनुमान नहीं होता। अब यहाँ की स्थिति क्या है कि अगर हम यहाँ प्रमाकरणत्व रूप प्रामाण्य को साध्य मानेंगे तो क्या गड़बड़ी होगी कि हेतु जो है वह व्यभिचारी हो जाएगा। यहाँ हेतु क्या है, हेतु है समर्थ प्रवृत्ति जनकत्व। यह जो हेतु है यह व्यभिचारी होगा, कैसे, क्योंकि साध्य से भिन्न में भी चला जाएगा। साध्य से भिन्न यहाँ पर कौन है, तो स्मृति है, क्योंकि स्मृति में है समर्थ प्रवृत्ति जनकत्व माना जाता है। तो इस स्मृति में समर्थ प्रवृत्ति जनकत्व हेतु चला जाएगा लेकिन प्रमाकरणत्व रूप साध्यत्व नहीं जाएगा। तो प्रमाकरणत्व रूप जो साध्य है उससे भिन्न हो गया स्मृति, और उस स्मृति में समर्थ प्रवृत्ति जनकत्व रूप हेतु के चले जाने से हेतु व्यभिचारी हो जाएगा और फिर अनुमान नहीं हो पाएगा। यदि हम यथार्थ रूप प्रामाण्य लेते हैं तो फिर सही रहेगा, क्योंकि स्मृति में यथार्थ रूप प्रामाण्य भी रहता है, माने साध्य भी रहेगा, साध्यत्व भी रहेगा, और हेतु जो है समर्थ प्रवृत्ति जनकत्व ये दोनों रहेगा। तो इसीलिए हेतु व्यभिचारी न बने, अनुमान का अवसर बने, अनुमान का उदय हो, इसीलिए यहाँ पर प्रमाणम का अर्थ जो है यथार्थ रूप प्रामाण्यम करना है, प्रमाकरणत्व रूप प्रामाण्य नहीं करना है। यदि हम प्रमाकरणत्व रूप प्रामाण्य अर्थ करेंगे तो समर्थ प्रवृत्ति जनकत्व रूप जो हेतु है वह व्यभिचारी हो जाएगा, माने साध्य से इतर जो स्मृति है उसमें भी वह हेतु चला जाएगा और फिर अनुमान नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से व्यभिचारापत्ति के कारण जो स्मृति में व्यभिचार हेतु का स्मृति में व्यभिचारापत्ति होगी, इसीलिए यहाँ पर प्रमाणम का अर्थ जो है यथार्थ यथार्थत्व रूप प्रमाण ही करना चाहिए। वही आगे कहा कि हेतुस्तु समर्थ प्रवृत्ति जनकत्वम, यहाँ जो हेतु है वह क्या कौन सा हेतु है, तो समर्थ प्रवृत्ति जनकत्व रूप हेतु है। इसका मतलब होता है फलवत प्रवृत्ति जनकत्व। ये पहले भी बात आई थी कि फलवती प्रवृत्ति का जो जनक हो उसी को समर्थ प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है। और यह जो जनकत्व है यह जनकत्व उसमें यथार्थ रूप प्रामाण्य जहाँ पर है जल ज्ञान में उसमें रहता है। और यथार्थ रूप जो प्रामाण्य जिसमें स्मृति में रहता है उसमें भी रहता है। इस तरह से व्यभिचारापत्ति नहीं होती है। आगे कुछ जो बात बताएंगे उसके लिए एक भूमिका आप समझ लीजिए कि दो तरह का ज्ञान होता है, एक अभ्यास दशापन्न ज्ञान और एक अनभ्यास दशापन्न ज्ञान। तो अभ्यास दशापन्न ज्ञान वाल जो होता है उसमें केवल व्यतिरेकी अनुमान से प्रामाण्य का ग्रहण होता है। फिर से सुन लीजिएगा, अभ्यास दशापन्न ज्ञान जहाँ हो वहाँ पर केवल व्यतिरेकी अनुमान से प्रामाण्य का ग्रहण होता है, और जहाँ पर अनभ्यास दशापन्न ज्ञान हो वहाँ पर जो प्रामाण्य का ग्रहण होता है वह अन्वय व्यतिरेकी अनुमान से ग्रहण होता है। ये अंतर है अभ्यास दशापन्न ज्ञान और अनभ्यास दशापन्न ज्ञान। अभ्यास दशापन्न ज्ञान में केवल व्यतिरेकी अनुमान से प्रामाण्य का ग्रहण होता है, और अनभ्यास दशापन्न ज्ञान रहने पर वहाँ पर अन्वय व्यतिरेकी अनुमान से प्रामाण्य का ग्रहण होता है। अब इस ऐसा क्यों होता है तो आप याद करिए, मैंने पिछले पाठ में बताया था कि जहाँ पर दृष्टांत संभव हो वहाँ पर तो अन्वय व्यतिरेकी अनुमान किया जाता है, जहाँ पर दृष्टांत संभव न हो वहाँ पर केवल व्यतिरेकी अनुमान किया जाता है। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है। अब आ जाइए कि ये अभ्यास दशापन्न ज्ञान क्या है और अनभ्यास दशापन्न ज्ञान क्या है। तो अभ्यास दशापन्न ज्ञान वह होता है जहाँ पर पूर्व में सफल प्रवृत्ति नहीं हुई हो, पहले कभी जो है ना जल ज्ञान हुआ हो और जल ज्ञान के बाद सरोवर में जाकर के जल पिया हो, इस तरह का सफल प्रवृत्ति जनक ज्ञान अगर नहीं हुआ है तो वहाँ जो ज्ञान है उसको कहते हैं अभ्यास दशापन्न ज्ञान। और जहाँ पर पहले जो है ना सफल प्रवृत्ति हो चुकी हो वहाँ पर जो ज्ञान रहता है उस ज्ञान को कहते हैं अनभ्यास दशापन्न ज्ञान। तो जहाँ अनभ्यास दशापन्न ज्ञान होगा वहाँ पहले भी जो है सफल प्रवृत्ति हुई रहेगी उनकी, तो वहाँ पर दृष्टांत मिल जाएगा क्योंकि पहले उसको सफल प्रवृत्ति उसकी हो चुकी है। तो दृष्टांत मिल जाने के कारण वहाँ तो अन्वय व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा जो है प्रामाण्य का ग्रहण होगा। लेकिन अभ्यास दशापन्न में पहली बार जो है जहाँ पर ये ज्ञान हो रहा है जल ज्ञान और प्रवृत्ति हो रही है वहाँ पर तो उससे पहले कभी सफल प्रवृत्ति हुई नहीं उसकी, उसको कोई दृष्टांत कोई उदाहरण जो है दूसरा मिलेगा नहीं, तो वहाँ पर केवल व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा ही प्रामाण्य का ग्रहण होगा। इस भूमिका को समझ जाने के बाद अब आप पंक्ति पर देख जाइए, इसमें कहा कि अनेन तो केवल व्यतिरेकी अनुमान है ना, यहाँ जो केवल व्यतिरेकी अनुमान बताया गया, केवल व्यतिरेकी अनुमान क्या बताया गया कि विवादाध्यासितम जल ज्ञानम प्रमाणम समर्थ प्रवृत्ति जनकत्वात् यन्न प्रमाणम न तत्समर्थाम प्रवृत्तिम जनयति यथा प्रमाणाभासः। यह जो केवल व्यतिरेकी अनुमान वाक्य है इससे अभ्यास दशापन्नस्य ज्ञानस्य प्रामाण्य अवबोधित है। इसमें अभ्यास दशापन्न ज्ञान जो है उस ज्ञान का प्रामाण्य अवबोधित होता है, उस प्रामाण्य का ग्रहण किया जाता है। और जहाँ पर अनभ्यास दशापन्न ज्ञान हो वहाँ पर तद दृष्टांतेन, वहाँ पर तो उसको दृष्टांत मिल जाता है उदाहरण मिल जाता है क्योंकि पहले उसकी कहीं पर किसी ज्ञान से सफल प्रवृत्ति हो चुकी है, तो वहाँ पर दृष्टांत के मिल जाने से जल प्रवृत्तेह पूर्वम अपि, जल पीने में प्रवृत्ति से पहले भी तज्जातीयत्वेन, तज्जातीयत्वेन माने दृष्टांत के समान जो है उसको लिंगेन अन्वय व्यतिरेकी अनुमानेन, अन्वय व्यतिरेकी अनुमान के आधार पर जो है उसको अन्यस्य ज्ञानस्य अनभ्यास दशापन्नस्य, माने अनभ्यास दशापन्न जो ज्ञान है उसके उसके प्रामाण्य का जो है ग्रहण होता है। तो जो कि मैंने पहले बताया कि अभ्यास दशापन्न ज्ञान का प्रामाण्य का ग्रहण होता है केवल व्यतिरेकी अनुमान से, और अनभ्यास दशापन्न ज्ञान के प्रामाण्य का ग्रहण होता है अन्वय व्यतिरेकी अनुमान से। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभ्यास दशापन्न ज्ञान में, ज्ञान के स्थल में दृष्टांत नहीं मिलता है, और अनभ्यास दशापन्न ज्ञान के प्रामाण्य के ग्रहण के समय में उसको दृष्टांत पहले से मालूम रहता है, इसलिए ये दोनों में अंतर है। आगे कहते हैं तस्मात् परतः एव प्रामाण्यम्, इसीलिए परतः ही प्रामाण्य मानना चाहिए, अर्थात अनुव्यवसाय से ज्ञान का ग्रहण मानना चाहिए, और ज्ञान के प्रामाण्य का ग्रहण जो है वह अनुमान से मानना चाहिए, परतः मानना चाहिए। नो ज्ञान ग्राहके नैव, बल्कि ज्ञान ग्राहक सामग्री जो अनुव्यवसाय है उसी अनुव्यवसाय से ज्ञान के प्रामाण्य का भी ग्रहण स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस तरह से न्याय दर्शन का जो मत है उस मत को प्रतिपादित करके लास्ट में एक श्लोक कहते हैं, और इस श्लोक के द्वारा ये प्रमाण पदार्थ का जो निरूपण है, पहला जो सूत्र है प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन वाला, उसमें जो प्रमाण पदार्थ है उस पदार्थ का विवेचन असल में यहाँ आकर के समाप्ति होती है। असल में पूर्व सत्रह प्रथम सत्रार्ध का पाठ यहाँ पर आके खत्म होना चाहिए, लेकिन चूंकि प्रामाण्यवाद का जो विषय है ये बड़ा जटिल है, इसीलिए जो पाठ्यक्रम बनाने वाले विद्वान लोग हैं उन्होंने इसको जो है ना द्वितीय सत्रार्ध में ही रखा, पहले में नहीं रखा। तो यहाँ पर एक श्लोक के द्वारा समापन करते हैं, कहते हैं कि चत्वारी एव प्रमाणानि, की न्याय के मत में चार ही प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द। इन चारों प्रमाणों को युक्ति लेशोक्ति पूर्वकम, युक्ति लेश का अर्थ यहाँ पर संक्षेप करना है कि संक्षिप्त युक्ति के द्वारा यहाँ पर जो है उक्ति की गई है, माने बताया गया है चारों प्रमाणों को। किन्होंने बताया है? तो केशव मिश्र जी ने बताया है। किसके लिए बताया है? तो बाल बोधाय, बच्चों को सुगमता पूर्वक बोध हो जाए, इसीलिए यहाँ पर केशव मिश्र ने बताया। किसके आधार पर बताया? तो कहा कि यथा शास्त्रम अवर्णयत, कि जैसे दर्शन न्याय दर्शन शास्त्र में जिस तरह से प्रमाण को का विवेचन किया गया है उसके आधार पर यहाँ पर केशव मिश्र जी ने प्रमाण के बारे में वर्णन किया। इति प्रमाण पदार्थ समाप्त, इस तरह से प्रमाण पदार्थ का विवेचन जो है यहाँ पर समाप्त होता है। इस प्रकार से आपने प्रामाण्यवाद जो है इस जटिल विषय को यहाँ पर पढ़ा। मैं समझता हूँ कि मूल बात को जरूर आपकी समझ में आ गई होगी, और पंक्ति को भी अगर आप गंभीरतया देखेंगे तो वो पंक्ति अर्थ भी आपको जरूर समझ में आ जाएगा। हमने कोशिश की है कि एक एक शब्द का अर्थ भी बताऊं और वाक्य का अर्थ भी बताऊं और भाव भी आपको बताऊं। अब इसके बाद अगले पाठ में सूत्र का जो दूसरा पद है प्रमाण प्रमेय संशय में प्रमेय शब्द, उस प्रमेय के बारे में विस्तार से जो है आपको पढ़ाया जाएगा। और फिर जब प्रमेय खत्म होगा, प्रमेय बहुत सारे हैं, उस वह जब खत्म हो जाएगा फिर संशय प्रयोजन आदि का भी जो है लक्षण स्वरूप सब आपको बताया जाएगा। तो आज का पाठ यहीं पर जो है हम भी समाप्त करते हैं, और आप लोगों को बहुत ही साधुवाद, बहुत ही बधाई हो कि प्रामाण्यवाद को भी आपने पढ़ा और समझा। आप एक श्लोक सुने होंगे, हो सकता है कि स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम सुखांगना यत्र गिरो गिरंती, ये मंदन मिश्र का नाम सुना होगा। तो शंकराचार्य ने जब एक पानी पन भरनी माने पानी भरने वाली महिला को पूछा कि मंदन मिश्र जी का घर कहाँ है, तो उस पानी भरने वाली महिला ने इस श्लोक को सुनाया था और बताया था कि मंदन मिश्र का घर कहाँ है। तो उस क्रम में कहा कि स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, माने प्रमाण जो है वह स्वतः होता है, अथवा अर्थात प्रामाण्य का ग्रहण स्वतः होता है, और परतः प्रमाणम अप्रामाण्य का ग्रहण जो है परतः होता है। इति सुकांगना यत्र गिरो गिरंती, जहाँ पर सुख सारिकाएं तोता मैना ये सब जहाँ पर इस तरह का शास्त्रार्थ करता हो, अवे ही तन मंदन मिश्र धामा, और ऐसी जगह जहाँ आपको दिख जाए उसी को समझ लीजिए कि ये यही मंदन मिश्र का धाम है, यही मंदन मिश्र का घर है। तो स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम सुखांगना यत्र गिरो गिरंती शिष्योपशिष्ये रूपगीयमानम अवे ही तन मंदन मिश्र धामा, और सुख सारिकाएं भी जो है इस तरह का वहां पर जो है शास्त्रार्थ करते हुए करती हुई दिख जाएंगी, और शिष्योपशिष्य, और जहां पर गुरु शिष्य को पढ़ाता है, शिष्य जो है उपशिष्य को पढ़ाता है माने अपने से छोटे को पढ़ाता है, इस तरह से जहां पर और क्या पढ़ाता है तो यही स्वतः प्रामाण्य और परतः प्रामाण्य को जहाँ पढ़ाता हो। तात्पर्य ये है कि इतने कठिन विषय को भी जहाँ पर सारे लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी पढ़ते पढ़ाते हैं, ऐसी जगह जो है वही जगह है मंदन मिश्र का घर, इस तरह से परिचय दिया था। अब इससे ये साबित हो जाएगा गया बल्कि कि यह विषय कितना ही कठिन है, क्योंकि कठिनता को बताने के लिए ही कि मंदन मिश्र ऐसे पंडित हैं, ऐसे पंडित हैं कि उनके यहाँ इतने कठिन विषय पर भी जो है शास्त्रार्थ शिष्य उपशिष्य में चलता रहता है, सुख सारिकाएँ करती रहती हैं। तो इस तरह से और उस विषय को आप लोगों ने यहाँ पर जो पढ़ा है इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। फिर हम प्रमेय के बारे में अगले पाठ में चर्चा करेंगे।